एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार।
नमस्कार। आज हम एक तरह से टाइम मशीन में बैठेंगे।
हाँ बिल्कुल।
कहाँ जा रहे हैं हम?
15वीं-16वीं सदी के यूरोप, खासकर इटली। बात करेंगे पुनर्जागरण कला की, रेनेसा आर्ट की।
अच्छा, रेनेसा आर्ट, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो, वो सब?
हाँ वो भी, लेकिन रुकिए, इसे सिर्फ म्यूजियम में टंगी खूबसूरत पेंटिंग्स या मूर्तियों की तरह नहीं देखना है आज।
तो फिर कैसे देखना?
हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कला उस जमाने की जिंदगी से, वहाँ के समाज, राजनीति, धर्म से कैसे जुड़ी हुई थी। मतलब वो सिर्फ शोपीस नहीं थी।
ये दिलचस्प है। मतलब कला का असली काम क्या था उस समाज में?
बिल्कुल। और इस सफर में हमारी गाइड होंगी गेरल्डाइन ए जॉनसन।
हाँ, गेरल्डाइन जॉनसन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कला इतिहास की प्रोफेसर हैं। हमने उनकी दो किताबों के सार को आधार बनाया है, रेनेसेंस आर्ट और रेनेसेंस आर्ट अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
और जॉनसन का नजरिया, जैसा आपने कहा, कमाल का है। वो सिर्फ ये नहीं देखते कि कोई चीज सुंदर है या नहीं,
नहीं, वो पूछती हैं इसका फंक्शन क्या था, काम क्या था, ये किस माहौल में बनी और सबसे जरूरी,
इसे बनवाया किसने, पैसा किसने लगाया, वो संरक्षक यानी पेट्रन कौन था।
सही। और ये बातें आज भी जरूरी है, नहीं?
हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि कला या आज का मीडिया भी सोच लीजिए, कभी न्यूट्रल नहीं होती।
किसने बनाया, किसके पैसे से बना, कहाँ दिखाया गया,
ये सब चीजें उसके मतलब को तय करती हैं। ये हमें किसी भी चीज को सिर्फ ऊपरी तौर पर देखने के बजाय गहराई से समझने का एक तरीका सिखाता है।
तो चलिए गेरल्डाइन जॉनसन के इस नजरिए से पुनर्जागरण कला की दुनिया में चलते हैं।
हाँ, पर पहले जरा गेरल्डाइन जॉनसन के बारे में थोड़ी और बात कर ले।
बिल्कुल। जैसा बताया, ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर हैं और उनकी खास दिलचस्पी पुनर्जागरण और उसके बाद की यूरोपियन कला में है।
इटालियन मूर्तिकला, कला के सिद्धांत, कल्चरल हिस्ट्री, ये सब।
हाँ, लेकिन उनकी खासियत क्या है? मतलब और भी तो आर्ट हिस्टोरियंस हैं।
उनकी खासियत ये है कि वो कला को अकेले में नहीं देखती, वो उसे एक बड़े फ्रेम में रखती हैं।
बड़ा फ्रेम मतलब?
मतलब उस जमाने का समाज, राजनीति, धर्म, पैसा, सब कुछ। वो सिर्फ पेंटिंग की तकनीक नहीं देखती, वो उसके पीछे की पूरी कहानी देखती हैं।
अच्छा, और वो उन चीजों पर भी ध्यान देती हैं जिन्हें लोग अक्सर भूल जाते हैं।
जैसे?
जैसे कला बनवाने में महिलाओं की भूमिका क्या थी, या घरों में जो कला इस्तेमाल होती थी, शादी के संदूक, जन्म की ट्रे, उनका क्या मतलब था?
अरे हाँ, मतलब सिर्फ बड़े चर्च और महलों वाली आर्ट नहीं, आम जिंदगी की आर्ट भी।
बिल्कुल। उनका अप्रोच इंटरडिसिप्लिनरी है। वो इतिहास, समाजशास्त्र, सबको साथ लाती हैं, क्योंकि कला समाज से अलग थोड़ी है।
सही बात है।
और उनकी एक और खूबी है, वो मुश्किल अकेडमिक बातों को भी बहुत आसान बना देती हैं।
हाँ, बिना उसे सतही बनाए, वो रटवाती नहीं, सोचने पर मजबूर करती हैं क्यों बनी, किसके लिए बनी।
तो फिर उनकी किताबों का मेन आइडिया क्या है, वो कहना क्या चाह रही हैं?
जॉनसन का सबसे बड़ा तर्क ये है कि अगर रेनेसा आर्ट को समझना है तो सिर्फ बड़े नामों के पीछे नहीं भागना है।
मतलब लियोनार्डो, माइकलएंजेलो, राफेल, इनसे आगे देखना होगा।
हाँ, हमें ये समझना होगा कि उस जमाने में कला सिर्फ सजावट के लिए नहीं थी, उसका एक काम था, एक मकसद था, वो उस वक्त की जिंदगी का एक एक्टिव हिस्सा थी।
और वो ये भी कहती है ना कि ये सिर्फ पुरानी ग्रीक और रोमन आर्ट की कॉपी नहीं थी, जो अक्सर कहा जाता है कि रेनेसा माने रीबर्थ।
बिल्कुल। वो इस रीबर्थ वाले आइडिया को थोड़ा चैलेंज करती हैं, कहती हैं ये सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं था।
तो फिर क्या था?
ये एक मिक्सचर था, पुरानी क्लासिकल प्रेरणा थी, मध्ययुग की विरासत थी और उस समय के नए आइडियाज भी थे। कलाकार पुरानी चीजों से सीख रहे थे पर उन्हें अपने जमाने के हिसाब से बदल रहे थे।
जैसे कोई पुराना गाना रीमिक्स करना पर अपने अंदाज में।
हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और जॉनसन एक और जरूरी बात कहती हैं, जब हम आज म्यूजियम के शांत सफेद दीवारों के बीच कोई पेंटिंग देखते हैं
तो हम उसका असली मतलब भूल जाते हैं।
हाँ, उसका असली काम क्या था, वो किस माहौल के लिए बनी थी, ये सब पीछे छूट जाता है। वो कहती हैं हर चीज का, चाहे वो चौराहे की मूर्ति हो, चर्च की पेंटिंग हो या शादी का संदूक, एक खास काम था।
उसे किसी खास इंसान या ग्रुप ने किसी खास वजह से किसी खास जगह के लिए बनवाया था।
बिल्कुल। यानी कॉन्टेक्स्ट और फंक्शन, संदर्भ और कार्य, यही कुंजी है।
ठीक है, ये तो दिलचस्प है। तो अब जॉनसन के विश्लेषण के कुछ खास विषयों पर बात करें। पहला था पहचान, कलाकार और संरक्षक।
हाँ, आइडेंटिटी, इसमें क्या खास बात है?
देखिए, रिनेसा में कलाकार की इज्जत बढ़ने लगी थी, मध्य युग में वो बस एक कारीगर था, गुमनाम सा। पर अब कलाकार पहचाना जाने लगा, उसे बुद्धिमान, क्रिएटिव माना जाने लगा, जैसे गिबर्ती ने फ्लोरेंस के दरवाजों पर अपना चेहरा बना दिया, या माइकल एंजेलो जिनका नाम ही काफी था।
हाँ, आर्टिस्ट अब सेलिब्रिटी बन रहे थे, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है ना?
नहीं, जॉनसन कहती हैं, ठीक है कलाकार स्टार बन रहा था, पर असली पावर अक्सर किसी और के हाथ में थी।
किसके हाथ में?
संरक्षक के हाथ में, पैटर्न, यानी वो अमीर बैंकर जैसे मेडिसी परिवार, या पोप, या शहर की कमिटी, या कोई धार्मिक संगठन जो पैसा लगा रहा था।
अच्छा, तो सवाल ये है कि वो पैसा क्यों लगा रहे थे?
बिल्कुल, पुण्य कमाने के लिए, अपनी शान दिखाने के लिए, अपनी राजनीतिक ताकत जताने के लिए, शहर को सुंदर बनाने के लिए, कई वजहें थीं।
तो मतलब कलाकार भले ही ब्रश चला रहा हो, पर धुन कोई और तय कर रहा था।
कितना सोना लगेगा, कितना महंगा वाला नीला पत्थर, लैपिस लाजुली लगेगा, यहाँ तक कि कभी कभी स्टाइल भी तय होता था।
बाप रे।
तो कलाकृति सिर्फ कलाकार की सोच नहीं थी, वो संरक्षक की पहचान, उसके इरादे, उसके पैसे का भी आईना थी। इसीलिए जॉनसन कहती हैं, ये किसने बनाया से पहले पूछो इसके पैसे किसने दिए और क्यों।
वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है देखने का। अच्छा, अगला पॉइंट, जगह का महत्व, लोकेशन लोकेशन लोकेशन।
हाँ, ये प्रॉपर्टी डीलर जैसा लगता है, पर आर्ट के लिए भी उतना ही जरूरी है। जॉनसन का तर्क है कि किसी आर्ट पीस की असली जगह उसके मतलब के लिए बहुत जरूरी है।
कैसे?
जब हम उसे उसकी असली जगह, मान लीजिए कोई चर्च या चौराहा, से उठाकर म्यूजियम में रख देते हैं, तो उसका मतलब बदल जाता है, शायद कमजोर भी पड़ जाता है।
कोई उदाहरण देकर समझाएंगे?
जरूर, डोनाटेलो और माइकल एंजेलो की डेविड की मूर्तियां ले लीजिए, आज हम उन्हें महान कला मानते हैं।
हाँ बिल्कुल,
लेकिन जब वो फ्लोरेंस शहर में लगाई गई तो वो सिर्फ सुंदर मूर्तियां नहीं थी, वो फ्लोरेंस गणराज्य की ताकत का प्रतीक थी, शहर के लोगों का गर्व, उनकी आजादी का ऐलान थी।
अच्छा,
उन्हें जिस जगह लगाया गया, सरकारी इमारत के सामने या मेन चौक पर, वो जगह उनके इस राजनीतिक मतलब को और बढ़ाती थी, म्यूजियम में वो मतलब थोड़ा खो जाता है।
समझ गए। और धार्मिक जगहों की कला, जैसे मंदिरों या चर्चों में होती है?
बिल्कुल, सोचिए सिस्टीन चैपल या स्क्रोवेनी चैपल की दीवार पेंटिंग्स, वो सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, उन्हें ऐसे बनाया गया था कि दर्शक उनके बीच से गुजरें, कहानी को महसूस करें।
एक अनुभव की तरह।
हाँ, वो एक माहौल बनाती थी, प्रार्थना में मदद करती थी, कला वहां लोगों को रास्ता दिखाती थी, धार्मिक कहानियां सुनाती थी, और शहर और धर्म के मूल्यों की याद दिलाती थी। जगह ही मैसेज का हिस्सा थी।
ठीक है, अब अगला मटेरियल, तरीके और देखने के ढंग, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है।
है थोड़ा, पर जॉनसन इसे भी समाज से जोड़ती हैं, जैसे मूर्ति कांसे की बनेगी या संगमरमर की, ये सिर्फ कलाकार की पसंद नहीं थी।
तो
कांसा महंगा था, बनाने में मुश्किल था, तो ज्यादा शान की बात मानी जाती थी। संगमरमर टिकाऊ था और पुरानी क्लासिकल कला की याद दिलाता था।
अच्छा, और पेंटिंग के मटेरियल, फ्रेस्को बनाम ऑयल पेंटिंग।
हाँ, दीवार पे सीधे पेंट करना फ्रेस्को, या लकड़ी पर तेल से पेंट करना ऑयल पेंटिंग, इनकी चमक, टिकने की क्षमता, कीमत सब अलग थी, और ये चुनाव संरक्षक के बजट और पसंद पर भी निर्भर करता था।
ठीक है, और कलाकार अकेले काम नहीं करते थे, आपने बोटेगा का जिक्र किया था।
हाँ, ये जो अकेला जीनियस कलाकार वाली कहानी है ना, ये ज्यादातर बाद में बनाई गई है। जॉनसन बताती है कि कलाकार की वर्कशॉप, जिसे बोटेगा कहते थे, एक टीम की जगह थी।
टीम मतलब?
मास्टर कलाकार के साथ कई असिस्टेंट और सीखने वाले होते थे, कोई रंग पीस रहा है, कोई लकड़ी तैयार कर रहा है, कोई पेंटिंग के कम जरूरी हिस्से रंग रहा है। बड़ी बड़ी पेंटिंग्स और मूर्तियां असल में टीम एफर्ट थी।
अच्छा, जैसे आजकल फिल्में बनती हैं पूरी टीम के साथ।
बिल्कुल वैसा ही, और देखने वाले वो भी बस खड़े होकर नहीं देखते थे।
तो वो क्या करते थे?
वो कला से ज्यादा जुड़ते थे, वेदी के सामने घुटने टेकते, भक्ति की चीजों को छूते, और तस्वीरों में बने इशारों और चिन्हों का मतलब समझते थे, जो शायद आज हम ना समझे।
और वो पर्सपेक्टिव वाली बात, जिससे पेंटिंग में गहराई दिखती है।
हाँ, लीनियर पर्सपेक्टिव। जॉनसन कहती हैं कि वो सिर्फ एक टेक्निकल ट्रिक नहीं थी।
तो फिर क्या था?
वो दुनिया को देखने का एक नया, ज्यादा तर्कसंगत तरीका था। इससे पेंटिंग ज्यादा सच्ची लगती थी, और ये कहीं ना कहीं इंसान की बुद्धि और तर्क से ईश्वर की बनाई दुनिया को समझने की कोशिश का भी प्रतीक था।
वाह, तकनीक के पीछे का दर्शन, कमाल है। अब आते उस चीज पर जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, घरेलू कला, मतलब घरों के अंदर की आर्ट।
हाँ, जॉनसन इस पर खास जोर देती हैं। पुनर्जागरण सिर्फ चर्चों और चौराहों तक सीमित नहीं था, अमीर लोगों के घरों में भी कला भरी पड़ी थी।
किस तरह की कला?
कई तरह की, जैसे शादी के बड़े संदूक होते थे कैसोनी, उन पर अक्सर ऐसी कहानियां बनी होती थीं जो पत्नी के गुणों को दिखाती थीं, वफादारी, समझदारी वगैरह, ये दुल्हन के दहेज का हिस्सा थे।
अच्छा।
या फिर बच्चे के जन्म पर माँ को दी जाने वाली सजावटी ट्रे, डेशिदा पोर्टो। घरों में परिवार के पोर्ट्रेट होते थे जो उनका रुतबा और खानदान दिखाते थे।
जैसे आज हमारे घरों में शादी की तस्वीरें या बच्चों की तस्वीरें होती हैं, कुछ वैसा।
हाँ, पर उनका मतलब और गहरा था और इनमें महिलाओं की भूमिका अहम थी।
कैसे?
महिलाएं ही अक्सर इन चीजों को इस्तेमाल करती थीं और देखती थीं। ये चीजें उनकी जिंदगी, शादी, माँ बनना से सीधे जुड़ी थीं। इन पर बनी कहानियां उन्हें एक तरह से सिखाती थीं कि समाज उनसे क्या उम्मीद रखता है।
तो ये घरेलू कला महिलाओं की दुनिया को समझने का एक जरिया है।
बिल्कुल। अब अगला विषय, भक्ति कला। ये तो सबसे अहम रहा होगा, है ना?
हाँ, लगता तो यही है।
बेशक, जॉनसन साफ कहती हैं कि पुनर्जागरण में ज्यादातर कला धर्म की वजह से ही बनी। आज जो आर्ट बची है उसमें से ज्यादातर धार्मिक है और उसका ईसाई धर्म में एक स्पष्ट काम था।
जैसे?
जैसे चर्च में वेदी के पीछे लगी बड़ी पेंटिंग जिन्हें आल्टर पीसेस कहते हैं। वो प्रार्थना सभा का केंद्र बिंदु होती थी। वो अनपढ़ लोगों को भी धर्म की मुश्किल बातें, कहानियां समझाती थी।
विजुअल एड्स की तरह?
हाँ, एक तरह से। और घर पे निजी पूजा के लिए छोटी मूर्तियां और तस्वीरें होती थीं।
अच्छा, पर्सनल भक्ति के लिए।
हाँ, इनका मकसद था भगवान, मरियम या संतों के प्रति भावना जगाना, लोगों को अच्छा बनने के लिए प्रेरित करना, व्यवहार के लिए मॉडल देना। कुछ तस्वीरों में तो चमत्कारी शक्ति भी मानी जाती थी।
सच में?
हाँ, तो कला सिर्फ सजावट नहीं थी, वो आस्था का एक जरूरी औजार थी, एक तरह की कह सकते हैं आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी।
आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी, वाह।
हाँ।
अच्छा, अब वो बाकी के दो पॉइंट्स भी जल्दी से देख लेते हैं, अन्य का चित्रण और इटली से परे।
हाँ, अन्य का चित्रण मतलब पुनर्जागरण के लोग अपने से बाहर की दुनिया को कैसे देखते थे।
बाहर की दुनिया मतलब?
जैसे पुरानी ग्रीक रोमन सभ्यता या उस समय के मुस्लिम, यहूदी, अफ्रीकी लोग। उनकी तस्वीरों में अक्सर जिज्ञासा, डर, पूर्वाग्रह सब मिला जुला होता था। ये दिखाता है कि वो दुनिया को कैसे समझते थे।
और इटली से परे?
इसका मतलब है कि रेनेसा सिर्फ इटली में नहीं सिमटा था, ये पूरे यूरोप में फैल रहा था।
कैसे फैला?
कलाकारों के आने जाने से, जैसे ड्यूरो इटली गए, छपाई वाली किताबों और तस्वीरों से। इटली के कलाकार दूसरे देशों के दरबारों में काम करने गए और उत्तरी यूरोप के कलाकारों ने भी नए तरीके खोजे, जैसे ऑयल पेंटिंग, जिसने इटली को भी प्रभावित किया।
तो ये एक तरह का कल्चरल एक्सचेंज था।
बिल्कुल, विचारों और स्टाइल का एक जाल बुन रहा था पूरे यूरोप में।
ठीक है, तो इस पूरी गहरी बातचीत का निचोड़ क्या है? जॉनसन की बातों से हमें क्या मुख्य बातें याद रखनी चाहिए?
मेरे हिसाब से कुछ 4-5 मुख्य बातें हैं। पहली, कला सिर्फ देखने की चीज नहीं थी, उसका एक काम था, समाज में उसका एक फंक्शन था।
हाँ, जैसे सिखाना, प्रचार करना, रुतबा दिखाना, भक्ति जगाना, आज के विज्ञापन या सियासी पोस्टरों की तरह।
बिल्कुल। दूसरी, असली बॉस अक्सर संरक्षक था। कलाकार से पहले पूछो पैसा किसने दिया और क्यों, ये आज भी सच है कॉरपोरेट फंडिंग या सरकारी ग्रांट्स के मामले में।
तीसरा,
जगह जगह जगह, कॉन्टेक्स्ट सब कुछ है। किसी चीज को उसकी असली जगह से हटा दो तो उसका मतलब बदल जाता है।
लोग अपना रुतबा भी बढ़ा रहे थे अक्सर एक ही काम से।
और पांचवी, शायद वो टीम वर्क वाली बात।
हाँ।
बिल्कुल, महान कला अक्सर टीम वर्क का नतीजा थी, अकेले जीनियस की नहीं, ये आज के बड़े प्रोजेक्ट्स जैसा है।
तो ये सब जानने के बाद जॉनसन के कौन से विचार या कथन सबसे ज्यादा असरदार लगते हैं?
मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है, हमें पुनर्जागरण कला को आधुनिक संग्रहालय के चश्मे से देखने के प्रलोभन का विरोध करना चाहिए। ये वस्तुएं एक शोर भरी जीवंत दुनिया का सक्रिय कार्यात्मक हिस्सा थी।
हाँ, ये हमें उस कला को उसकी असली जिंदगी में इमेजिन करने को कहता है।
और ये वाली भी, ये पूछने से पहले कि इसे किसने बनाया, एक अधिक उपयोगी सवाल अक्सर ये होता है कि इसके लिए भुगतान किसने किया और क्यों।
ये संरक्षक की अहमियत बताता है। और पर्सपेक्टिव वाली बात भी बहुत गहरी है, परिप्रेक्ष्य कभी भी केवल एक तकनीकी नवाचार नहीं था, ये दृश्य जगत के साथ मानवता के संबंध के बारे में एक दार्शनिक बयान था।
हाँ, कि तकनीक भी विचार व्यक्त करती है, ये दिखाता है कि कला को समझना सिर्फ वाओ सुंदर है कहने से कहीं ज्यादा है।
तो ये 500 साल पुरानी बातें आज हमारी जिंदगी में कैसे काम आ सकती हैं?
हाँ।
इनका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है?
कई तरीकों से। सबसे पहले तो ये हमें एक आलोचनात्मक नजर देता है, क्रिटिकल आय।
कैसे?
आज हम कोई भी चीज देखें, खबर, फिल्म, विज्ञापन, सोशल मीडिया पोस्ट, हम रुक कर पूछ सकते हैं, इसे किसने बनाया, पैसा किसने लगाया, इसका असली मकसद क्या है। ये हमें मीडिया को बेहतर समझने में मदद करता है।
सही बात है।
और
ये हमें तस्वीरों और विजुअल्स की ताकत समझाता है। जैसे उस जमाने में कला का इस्तेमाल होता था, वैसे ही आज भी सरकारें, कंपनियां, नेता इमेज बिल्डिंग, ब्रांडिंग, प्रोपेगेंडा के लिए विजुअल्स का इस्तेमाल करते हैं। हम इस भाषा को बेहतर डिकोड कर सकते हैं। हाँ, और शायद आज की डिजिटल दुनिया में ये हमें हाथ से बनी चीजों, स्किल और क्राफ्ट की कद्र करना भी सिखाता है।
बिल्कुल। और ये भी है कि हम अपने आज के कल्चर, आर्ट, डिजाइन, मीडिया को देखकर अपने समाज के मूल्यों और चिंताओं को समझ सकते हैं।
संक्षेप में ये दुनिया को ज्यादा गहराई और आलोचनात्मक नजर से देखना सिखाता है।
बिल्कुल।
तो इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे बड़ी सीख या टेक अवे क्या रहा?
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि कला कभी अकेली नहीं होती, वो हमेशा अपने समाज, उसके पैसे देने वालों और उसके मकसद से जुड़ी होती है। अब मैं किसी भी आर्ट पीस को देखकर सिर्फ ये नहीं सोचूंगा कि ये सुंदर है या नहीं, बल्कि ये पूछूंगा, ये यहाँ क्यों है, इसका काम क्या था, किसने बनवाया होगा और क्यों।
और मेरे लिए ये जानना बहुत आकर्षक था कि कैसे पर्सपेक्टिव जैसा तकनीकी इनोवेशन भी सिर्फ तकनीक नहीं था, बल्कि वो दुनिया को देखने का एक नया नजरिया, एक नया दर्शन था। कला वाकई विचारों को शक्ल देने का एक शक्तिशाली जरिया थी और है।
हाँ, ये याद दिलाता है कि आज भी विजुअल कल्चर हमारे विचारों को कैसे प्रभावित करता है।
बिल्कुल, ये सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है, ये हमें वर्तमान को समझने का एक नया लेंस देता है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्थर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।